ओम शांति। बाबा का बनके अच्छा तो लग ही रहा है सभी को, सारे दुख दर्द भूल गए हैं। बस अब एक कार्य हमें ये करना है कि बाबा की आशाओं को पूर्ण करने के लिए विशेष प्रयास और पुरुषार्थ करना है। बाबा ने अपना सब कुछ तो हमें दे दिया है, सारा ज्ञान दे दिया, हम पे अपना इतना प्यार बरसा रहे हैं, अपना सब कुछ दे रहे हैं। रिटर्न अब हमें करना है, उसके लिए कुछ अच्छा प्लान हम लोगों के पास होना चाहिए पुरुषार्थ का। चलते चलते हम वर्ष के अंत में आ गए हैं, अब ये चेक करने का समय है कि हमारा सारा साल कैसा रहा। हमने सारे साल जो पुरुषार्थ किया या सारे साल हमने जो सेवाएं की, उससे हम कितने संतुष्ट हैं? क्या और बेहतर किया जा सकता था? कहीं हमारा समय अनावश्यक बातों में तो नहीं गया? इन चीजों पर जरूर विचार कीजिएगा, क्योंकि जब हम चेक करते हैं तभी चेंज कर पाते हैं ना? और हमारे यहाँ की ये परंपरा ही है कि चेक करो और चेंज करो, चेक करो और चेंज करो। जहां कहीं भी लगता है कि जिस चीज में सुधार हो सकता है, जहां कमियां रह गई थी, उन चीजों पर हमें जरूर वर्क करना है। और बाबा हमेशा ये कहते हैं कि अपने टीचर आप ही बनो। कोई यदि दूसरा हमें कोई प्लान देता है तो उसको करने में हमें थोड़ी झिझक होती है कि हम करें ना करें, या कई बार हम उसमें आनाकानी कर जाते हैं। लेकिन जब हमारा खुद का प्लान होता है कि हमें ये करना ही है, तो उसमें बहुत दृढ़ता रहती है और वो करने में बहुत आनंद आता है। इसीलिए अपने लिए कुछ प्लान, अब वर्ष के अंत में आप आ गए हैं तो एक कार्य तो ये कि सारे साल पर एक नजर डालें, और दूसरा अब हम 2016 में प्रवेश करने जा रहे हैं ना। 16, तो 16 किस बात का प्रतीक होता है? 16 कला संपूर्ण का, ये कहते हैं ना, 16 का अर्थ ही है संपूर्णता, कि इसकी बात तो बिल्कुल 16 आने सच्ची है, ऐसा कहते हैं ना। तो 16 कला का भी भाव यही है, हमारी संपूर्णता। चांद के लिए यूज करते हैं कि चांद आज बिल्कुल ही 16 कला संपूर्ण है। तो 2016 हमें किस बात के लिए प्रेरित कर रहा है? संपूर्ण बनने के लिए। लेकिन झोंकना होगा अपने आप को। संपूर्णता एक बहुत बड़ी उपलब्धि है ना, एक बहुत बड़ा हमारा विषय है, हमारी अंतिम मंजिल है हम कह लें। लेकिन हम पूरी तरह डूब के, पूरी तरह जूझ के, पूरी तरह लग के यदि इस आने वाले वर्ष में अच्छा पुरुषार्थ कर लें, अच्छी प्लानिंग के साथ कर लें, तो एक अच्छी शुरुआत होगी। और आपने देखा होगा कि जब सुंदर पुरुषार्थ हम करते हैं, जूझ के और लग के पुरुषार्थ करते हैं, तो सचमुच एक अंदर में संतोष की अनुभूति होती है कि हम वो कर रहे हैं जो बाबा हमसे कराना चाहते हैं, या हमें सचमुच जो करना चाहिए। सारे कल्प तो सब कुछ हम करेंगे, लेकिन ये वक्त है जो बाबा हमें करने को कह रहे हैं, वो जिस आत्मा ने कर लिया, सचमुच सारे कल्प उसका श्रेष्ठ और सुंदर हो जाएगा। तो क्या प्लान है आप लोगों का संपूर्णता के लिए? आज जब क्लास के लिए कहा छोटे लाल भाई जी ने, तो मुझे विचार आया कि वर्ष के अंत में है तो क्यों ना नए वर्ष की कुछ बातें हों। और जब संपूर्णता की बात है तो मुझे विचार आ रहा था कि हम 7S पे जरूर विचार करें, जो हमें संपूर्णता की ओर ले जाने वाले। और भी बहुत सारी बातें हो सकती हैं, लेकिन जो आज मुझे विचार आए कि आप लोगों के साथ बांटूं, हम सब पुरुषार्थी हैं, एक दूसरे के मित्र हैं, एक दूसरे के साथी हैं, तो एक दूसरे के अनुभवों को, चिंतन को आपस में हम बांटते हैं। तो विचार ऐसा आया कि संपूर्णता तक पहुंचने के लिए हम 7S पे वर्क करें, कार्य करें। इसे मधुबन से आप गिफ्ट के रूप में भी ले जा सकते हैं, चिंतन कीजिएगा। हर एक केस इसमें से बहुत विशाल है और एक एक पे एक क्लास हो सकती है, लेकिन मैं जस्ट टच कर रहा हूं एक एक चीज को। पहला इस है श्रेष्ठ स्मृति, श्रेष्ठ स्मृति जिसका महत्व इतना है, बाबा के एक महावाक्य से आप समझ सकते हैं। बाबा ने कहा है ब्राह्मणों के लिए स्मृति ही जीवन है और विस्मृति ही मृत्यु है। यदि तुम स्मृति स्वरूप हो कि तुम कौन हो, तो जैसे तुम जीवित हो, और यदि तुम्हें स्मृति नहीं है कि तुम कौन हो, तो जैसे तुम मृत हो। कितनी बड़ी बात है, जीवन और मृत्यु की बात है। यदि हम में और संसार वालों में हम थोड़ा अंतर देखें कि क्या है, तो सीधा सीधा एक अंतर ये दिखाई देता है कि हम स्मृति स्वरूप रहने वाले हैं। हमें ये स्मृति आ गई है कि हम कौन हैं। बाबा ने हमें ये स्मृति दिला दी है, दुनिया वालों को ये स्मृति नहीं है। लेकिन इस स्मृति के हमें स्वरूप बनना है, इसीलिए इस एक बात पर हम नए वर्ष में अपने प्लान में से जरूर ऐड करें कि कैसे हम स्मृति स्वरूप बने, क्योंकि हमारा अंतिम पेपर भी यही है। कौन सा? नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। जो स्मृति स्वरूप होंगे, इसे यदि थोड़ा सा उल्टा कर लें, नष्टो मोहा वही बनेंगे या पास विद ऑनर वही बनेंगे जो स्मृति स्वरूप होंगे। तो कौन सी स्मृतियां बाबा ने दिलाई हैं, इसे आप निकालिएगा। अभी नहीं निकालते, लंबी लिस्ट है इसकी, लेकिन आप सबके लिए होमवर्क है। अभी हमारे पास 10 दिन है नए साल में प्रवेश करने से पहले, निकालें स्मृति। कौन कौन सी स्मृति बाबा ने हमें दिलाई है, कौन हूं मैं, लिस्ट बनाएं। और जब आप इस लिस्ट में जाएंगे, इसकी एक सुंदर चिंतन करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि आप कौन हैं। आप साधारण नहीं हैं, कितने महान हैं, सारे संसार के आधार हैं, पूर्वज हैं। क्योंकि बाबा हम सबके पीछे मेहनत इसीलिए कर रहे हैं ना, क्यों कर रहे हैं, पीछे पड़े हुए हैं ना बाबा हम सबके पीछे। जब से बाबा ने हमें चुना है, तब से बाबा हमारे पीछे लगे हुए हैं, मेहनत कर रहे हैं, पीछे पड़े हुए हैं कि तुमको ये करना है, ये करना है, ये करना है। क्यों बाबा हमारे पीछे पड़े हुए हैं, क्यों पीछे पड़े हैं? इसीलिए ना, क्योंकि हम आधार मूर्त हैं, इस सृष्टि के पूर्वज हैं, हीरो एक्टर हैं। और जब हम परिवर्तित होंगे, हमारे जीवन में श्रेष्ठता आएगी, दिव्यता आएगी, हमारे संपूर्ण संस्कार डिवाइन हो जाएंगे, तब संसार की आत्माएं ऑटोमेटिक चेंज हो जाएंगी। हम आधार हैं, जड़ हैं। और जब हमारे जीवन में संपूर्ण परिवर्तन आ जाएगा, ऑटोमेटिक जड़ से ही तो होकर के पानी खाद जो भी चीजें हैं वो सारे वृक्ष में जाती हैं ना। हमारा परिवर्तन सारे संसार को परिवर्तित कर देगा, इसीलिए बाबा हम सबके पीछे इतनी मेहनत कर रहे हैं। तो पहली बात, फर्स्ट एस है श्रेष्ठ स्मृति, मैं कौन हूं। जब भी आप मैं शब्द को यूज करें, इसे भी एक सुंदर पुरुषार्थ के रूप में यूज कर सकते हैं, जब भी मैं शब्द यूज करें, मैं कौन सी आत्मा हूं, इसे जरूर याद कर लिया करें। और हर बार अपने किसी ना किसी स्वमान में स्थित हो, तो सुंदर अभ्यास भी होगा और सुंदर अनुभव भी होगा। तो इसकी सूची आप सब जरूर बनाएं कि मैं कौन हूं, मैं किसका हूं, कहां से आया हूं और मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है। ये आपको स्मृति दिलाएंगे कि आप कौन हैं। बाबा को ये स्मृति पक्की हो गई थी ना, क्या कि बस अब मैं जाकर के मिचनू सा कृष्ण बनूंगा। तो बाबा कितने आनंदित रहते थे, कितने खुश रहते थे, है ना। और मुझे हमेशा बहुत खुशी होती है कि बाबा यहां बैठ करके मुरली सुनाया करते थे। तो जब भी मैं यहां आता हूं तो मुझे बहुत खुशी होती है। सबसे ज्यादा आनंद इस हिस्ट्री हॉल में बैठ करके ज्ञान की रोहरिहान करने में आता है, क्योंकि मम्मा बाबा हमारे सारे आदि रतन यहां बैठे हैं ना। तो स्मृति, बाबा को जैसे स्मृति थी और वो नशा था भविष्य का, हम भी ऐसी स्मृतियों को अपने प्रैक्टिकल स्वरूप में लाएं। दादी ने इस स्मृति को पक्का कर लिया था ना कि कर्मातीत बनना है, दीदी ने स्मृति को पक्का कर लिया था घर जाना है, हम भी क्यों ना स्मृति स्वरूप हो जाएं, तो जीवन तेजी से बदलेगा। और साथ ही साथ बाबा कहते हैं जैसी स्मृति होती जाएगी, तो सेकेंड ऐसा आता है समर्थ स्थिति। समर्थ स्थिति की अब आने वाले समय में हम सबको बहुत आवश्यकता होगी, बहुत ज्यादा आवश्यकता। जिसकी जितनी समर्थ स्थिति होगी वो उतना ही अचल रहेगा, अडोल रहेगा और अन्य आत्माओं की मदद कर पाएगा। इसीलिए बाबा कहते हैं कि तुम्हारा सबसे श्रेष्ठ खजाना है तुम्हारी समर्थ स्थिति। इसीलिए कुछ भी हो जाए, चाहे सब चीजें खो जाए, अपनी स्थिति को मत खोना। बाबा स्थिति को इतना ज्यादा महत्व देते हैं। तो अपनी स्मृति के साथ साथ हम अपनी स्थिति को समर्थ बनाएं और इस बात का जरूर ध्यान रखें आने वाले वर्ष में कि छोटी छोटी बातें या पास्ट की बातें या कोई भी स्वभाव संस्कार मेरी इस श्रेष्ठ इस स्थिति को बिगड़ने ना दे, क्योंकि स्थिति एक बार बिगड़ती है तो उसको बनाने में बहुत मेहनत लगती है। देखो घर बनाने में कितना मेहनत करना पड़ता है और घर को ढहाने में समय लगता है, नहीं लगता ना, बुलडोजर आया ढहा के चला गया 5 मिनट में। लेकिन यदि आपको बिल्डिंग बनानी होती है कितनी मेहनत करनी होती है। तो हम ये ध्यान रखें मेरी स्थिति को कोई भी चीज कोई भी बात बिगाड़े ना, और ये हमारे पास वक्त है ये चेक करने का कि मेरी जो समर्थ स्थिति है उसे कौन सी चीजें मुझे नीचे ले आती हैं, उन पे मैं वर्क करूं। और इस वर्ष के लिए एक सुंदर सा संकल्प रखूं कि मुझे अंगद के समान अचल अडोल बन करके रहना है। अंगद को कोई हिला पाया था? हिला पाया? सारी रावण की सेना लग गई हाँ, लेकिन कोई भी उसके पैर को नहीं हिला पाया। ऐसी क्या मेरी समर्थ स्थिति है जो चाहे कोई भी परिस्थिति आ जाए, कोई भी बातें आ जाए, कोई मुझे कुछ भी कह जाए, क्या मेरी स्थिति डावाडोल होती है? योगी के लिए वैसे भी कहते हैं ना, मान अपमान, निंदा स्तुति, जय पराजय, सर्दी गर्मी है। अभी सर्दी गर्मी का और आप सब इसमें पास भी डॉनर हो गए हैं। मुझे ऐसा लग रहा था कि सर्दी कितनी ज्यादा है हा? तो सबको वैसे सर्दी लगती है तो रजाई बहुत अच्छा लगता है ना, कि रजाई में बैठ करके भी क्लास सुना जा सकता है। लेकिन आप सब पास भी डॉनर हैं कि क्लास में बैठ करके एक सुंदर रिहान कर रहे हैं। तो समर्थ स्थिति पर भी हम इस आने वाले वर्ष में जरूर ध्यान देंगे, किसी भी कारण से मेरी स्थिति नीचे ना आए, डगमग ना हो। क्योंकि बाबा अवस्था के लिए कहते हैं, आप चिंतन कीजिएगा इन बातों पे, बाबा कहते हैं जितनी श्रेष्ठ अवस्था होगी उतनी ही श्रेष्ठ व्यवस्था होगी। हम कहीं पे भी हैं, सेवा स्थान पे हैं, यहां हैं, लौकिक में हैं, हमारे आसपास की व्यवस्था हमारी अवस्था पर आश्रित होती है। यदि अवस्था बहुत सुंदर है, समर्थ है स्थिति, तो व्यवस्था आपकी ऑटोमेटिक स्मूथ होती चली जाती है, जिसको आप कई बार अनुभव करते होंगे। अमृत वेला जिस दिन आपका बहुत सुंदर होता है, उस दिन सारा दिन कितना आनंद से बीतता है, स्मूथ जाता है, कोई हलचल नहीं, बल्कि दिन कैसे निकल गया आनंद आनंद में पता ही नहीं चलता। इससे स्पष्ट होता है कि जब स्थिति हमारी बहुत समर्थ हो जाएगी तो सब कुछ स्मूथ होता चला जाएगा, सहज होता चला जाएगा। जितनी समर्थ स्थिति, परिस्थितियां उतनी ही समाप्त होती चली जाएंगी। तो सेकेंड इज समर्थ स्थिति पर हम जरूर ध्यान देंगे, इसे नष्ट नहीं होने देंगे किसी भी कारण से, इसे संभाल के रखेंगे। जैसे हम अपने पैसे को, अपने धन को, अपने जेवरात को संभाल के रखते हैं ना, ऐसा तो नहीं करते कि हम रास्ते में चल रहे हैं और जेब में पैसे हैं तो उसे फेंकते फेंकते चल रहे हैं, इधर 5 फेंका, इधर 10 फेंका, इधर 50 फेंका, इधर 100 फेंका, ऐसा तो करते हुए नहीं चलते ना। बल्कि 5 का नोट भी गिर जाता है तो उसको वो टट से उठा लेते हैं कि भाई ये मेरी है हा? तो वैसे ही जब हम अपने स्थूल धन का इतना ध्यान रखते हैं तो जिस स्थिति को बनाने के लिए हम अमृत वेले से रात तक इतनी तपस्या करते हैं, इतनी सेवा करते हैं, किस लिए? अपनी स्थिति को ही समर्थ बनाने के लिए करते हैं ना, कि मेरी स्थिति बहुत पावरफुल हो जाए। और इतनी मेहनत करने के बाद किसी छोटी बात को लेकर के यदि हम अपनी उस स्थिति को खो देते हैं तो ये समझदारी नहीं है। तो हम इस आने वाले वर्ष में इसे भी अपने प्लान में जरूर शामिल करें कि हमेशा ऊंचे आसन पर रहना है। थर्ड इस है सकारात्मक वृत्ति। अपनी वृत्ति को हमें बहुत पॉजिटिव करना है। अब तक हम सकारात्मक सोच की बातें सुनते आ रहे हैं और कहते भी आ रहे हैं, लेकिन वृत्ति में वो हमारी समा जाए, अंदर एक एटीट्यूड बन जाए मेरी। जैसे वृत्ति वो है जो एटीट्यूड है, जो नेचुरल सी हो गई है। अब मैं अपने लिए भी, इस ब्राह्मण परिवार के लिए भी, परिस्थितियों के लिए भी, सांसारिक हलचलों के लिए भी अपने आप को बिल्कुल सकारात्मक वृत्ति वाला बना लूं। क्योंकि जहां सकारात्मकता है, जहां पॉजिटिविटी है, वहां स्थिति भी समर्थ होती है और साथ ही निरंतर उन्नति होती है। बाबा का एक महावाक्य मैं आप लोगों के सम्मुख रखना चाहता हूं। बाबा ने कहा है, यदि तुम अच्छा अच्छा सोचोगे तो कुछ बुरा भी होने वाला होगा तो वो भी अच्छा हो जाएगा। सी, इतनी पावर है ना पॉजिटिविटी में। मेरे यदि अच्छा अच्छा सोचने से बुरा भी अच्छा हो सकता है, तो यदि मैं अपने वृत्ति को ही, नेचुरल नेचर को ही एक पॉजिटिविटी में ढाल लूं, सकारात्मक बना लूं, तो मेरे आसपास का माहौल, मेरे आसपास के लोग, मेरे पास आने वाली जो समस्याएं हैं वो सब भी बिल्कुल बदल जाएंगी। एकदम हम एक नई दुनिया में, एक नए संसार में प्रवेश कर लेंगे यदि ऐसी पॉजिटिविटी हम अपनी बना सकते हैं तो। इसीलिए बाबा ने कहा भी था कुछ वर्ष पहले कि बाबा उन लोगों को प्राइज देंगे, किनको, जो व्यर्थ और नेगेटिव को अवॉइड करेंगे बाबा उन्हें परमात्मा अवार्ड देंगे, है ना। बाबा ने घोषणा की हुई है, तो घोषणा अभी भी है, जारी है। ये इनाम अभी तक किसी को मिला नहीं है, क्योंकि शायद हम लोग अभी तक व्यर्थ और नेगेटिव में चले जाते हैं ना। कोई बात देखी, कोई पास्ट की बातें आई, कुछ इधर उधर की चीज हुई, तुरंत आदत हो गई है ना। अब इसे बदलना है। मैं कई बार ऐसा सोचता हूं कि आखिर हम बदलेंगे कब, है ना। ये उठा पटक, ये हार जीत, ये सब चीजें चलती 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 आ रही हैं। कब आखिर, कब मतलब कब। एक बाबा जो कहते हैं कि डेट फिक्स करो, क्या हम सब मिलके एक डेट फिक्स कर सकते हैं कि बाबा 2016 इज लास्ट, और इसमें हम वैसा बन के आपको दिखाएंगे जैसा आप हमें देखना चाहते हैं। एक दृढ़ता की आवश्यकता है, एक लगन की आवश्यकता है, और मुझे लगता है प्यार का रिटर्न ये है। बाबा ने इतने वर्षों तक हमें इतना कुछ दिया है, इतना पाला है। स्पेशली मुझे तो ऐसा लगता है कि बचपन ही मधुबन में बीता है। शैलेंद्र भाई, हम सबका बचपन मधुबन में ही बीता है, दादियों की पालना में बीता है। बाबा ने पाला है ऐसा लगता है। तो क्या रिटर्न दें, यही रिटर्न है ना, कि वो जैसा चाहते हैं वैसे हम बन जाएं। तो थर्ड एस है, अब हम बिल्कुल अपनी वृत्ति को पॉजिटिव कर लें, सकारात्मक वृत्ति। और जिस दिन ये बन गया, उस दिन हम उलझेंगे नहीं कहीं, क्योंकि नकारात्मकता और व्यर्थ ये हमें उलझा लेती हैं और हमारी शक्तियों को भी नष्ट कर देती हैं। कैसी हो सकती है एक सकारात्मक वृत्ति। एक आश्रम में एक व्यक्ति गाय देके चला गया कि महाराज ये गाय आप रखिए। शिष्य को दिया, बोला महाराज को बोलिएगा कि एक गृहस्थी ये गाय देके गया है। तो जो शिष्य था वो अपने गुरुजी के पास गया और बोला कि गुरुजी एक गृहस्थी आया हुआ था और उसने गाय दी है। तो गुरुजी ने कहा बहुत अच्छी बात है, गाय दे के गया है, अब रोज हमें दूध पीने को मिलेगा। एक हफ्ते के बाद आया वो गृहस्थी, उसने कहा भाई मैं अपनी गाय ले जा रहा हूँ। अब वो गाय लेके चला गया। अब वो शिष्य भागा भाग आया गुरुजी के पास, बोला गुरुजी वो गृहस्थी आया था, वो अपनी गाय लेके चला गया। तो गुरुजी ने कहा चलो अच्छा हुआ, रोज रोज गोबर उठाने का जो झंझट था वो खत्म। मतलब गाय थी तो भी अच्छा था, हा? रोज दूध पीने को मिलेगा, और गाय ले गया तो भी अच्छा है, चलो रोज रोज कौन गोबर उठाए उसका, वो झंझट था, चलो झंझट से मुक्ति मिली। ये क्या है, हर सिचुएशन में, हर बात में हम यदि पॉजिटिव वृत्ति वाले हैं ना, हमारा एटीट्यूड बहुत पॉजिटिव है ना, हम बहुत लाइट रहते हैं, बहुत हल्के रहते हैं, अन्यथा हम उलझ जाते हैं ना। और गुरुजी कह सकते थे कैसा आदमी था, देखे गया और एक हफ्ते में ही वापस ले गया, ऐसा आदमी तो मैंने जीवन में नहीं देखा था। कई प्रकार की नेगेटिविटी हो सकती थी ना, बट पॉजिटिविटी है तो एक सेकेंड में स्टॉप, स्टॉप, उसमें भी हम अच्छी चीज ले लेते हैं। जिसको बाबा वर्षों से हम लोगों को ये बात सिखा रहे हैं कि गुलाब का पौधा खाद डालते हैं ना, उसकी हम जड़ में गोबर डालते हैं, खाद डालते हैं। गुलाब के पौधे में इतनी बड़ी क्वालिटी है कि वो खाद से, गोबर से खुशबू खींच लेता है, और फिर गुलाब के फूल को आप अपने नाक पे रखते, गोबर को तो नाक पे नहीं रखते है ना, वो गुलाब के फूल को रखते, लेकिन उसने गोबर से वो खुशबू खींचा है। तो जब एक पौधा हमारी रचना ऐसा कर सकता है तो क्या हमारे अंदर ये क्वालिटी नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए ना। तो सकारात्मक वृत्ति पर भी हम विशेष रूप से कार्य करें। प्लान में जरूर ऐड कीजिएगा। आप सब प्लान जब बनाएंगे नए वर्ष के लिए अपने लिए, इसे अपने प्लान में ऐड करें कि अब हम इतने पॉजिटिव बने, क्योंकि ये हमें आगे बढ़ाएगा, ये हमें उन्नति कराएगा और साथ ही साथ परमात्मा वार्ड भी यही चीज हमें दिलाएगा। मुझे महात्मा बुद्ध के भी जीवन का एक प्रसंग हमेशा याद रहता है पॉजिटिविटी के लिए, कि एक बार महात्मा बुद्ध के दो शिष्य आए महात्मा बुद्ध जी के पास और उनसे कहा कि भंते, हमारी दीक्षा पूरी हो गई है, अब हमें आज्ञा दीजिए कि हम अब जाएं और समाज की सेवा करें। तो बुद्ध जी ने कहा कि मैं तुम्हें आज्ञा दूंगा, लेकिन पहले तुम मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। तो उनके शिष्यों ने कहा कि पूछिए। तो बुद्ध ने कहा, यदि तुम किसी गांव में जाओगे और उस गांव के लोग तुम्हारी बात नहीं सुनेंगे, तुम्हें नेग्लेक्ट करेंगे, तो तुम क्या करोगे? तो उनके शिष्यों ने कहा कि ठीक है, यदि वो हमें नेग्लेक्ट करेंगे, हमारी बात नहीं सुनेंगे, तो हम सोचेंगे कि ठीक है, इन्होंने हमारी बात नहीं सुनी, कम से कम हमें गाली तो नहीं दिया ना, है ना। तो बुद्ध जी ने कहा, अच्छा यदि वो तुम्हें गाली देने लगे जैसे तुम उस गांव में जाओ, तो यदि वो तुम्हें गालियां देने लगे, गालियों की बरसात होने लगे, तो तुम क्या करोगे? तो उनके शिष्यों ने कहा कि यदि वो हमें गाली देंगे तो हम सोचेंगे कि ठीक है, गालियां ही तो दी ना, हमें पत्थर से तो नहीं मारा ना। बुद्ध थे, उन्होंने कहा अच्छा वो तुम्हें पत्थर से मारे तो उनके शिष्यों ने कहा कि ठीक है, यदि पत्थर से मारेंगे तो हम सोचेंगे कि ठीक है, पत्थर से ही मारा ना, जान से तो नहीं मारा ना। तो बुद्ध जी ने कहा यदि वो तुम्हें जान से मार दें तो उनके शिष्यों ने जो उत्तर दिया था, सी क्या है पॉजिटिविटी, क्या है सकारात्मक वृत्ति जो अंदर से निकल के आती है। जब बुद्ध ने ये कहा कि यदि वो तुम्हें जान से मार दें तो उनके शिष्यों ने कहा तब हम उनको बहुत दुआएं देंगे कि धन्य है ये आत्माएं जिन्होंने इतनी जल्दी हमें मुक्ति प्रदान कर दी। ये अंदर से निकलती है ना ये चीजें। क्या ऐसी पॉजिटिविटी हमारे अंदर है, या मेरी थाली से किसी ने एक रोटी उठा ली तो तुरंत मेरा नेगेटिव संकल्प चलने लगा, या खीर बना हुआ था, या सुंदर मावा या पकवान बना था, या गुलाब जामुन मेरी थाली में था और किसी ने उठा लिया, अब मेरे संकल्प चलने शुरू हो गया कि किसने ये गुस्ताखी की मेरी थाली से मेरे रसगुल्ले को उठाने की। ऐसा तो नहीं है ना। एक पॉजिटिव या सकारात्मक वृत्ति की ना बहुत ज्यादा आवश्यकता होगी, तभी हम फुल स्टॉप लगा पाएंगे। तो थर्ड एस है सकारात्मक वृत्ति। बहुत लंबी बात हो सकती है, लेकिन मुझे लगता है कि क्लियर हो गया होगा आपको कि कैसे हम अपने अंदर से अपने लिए, अपने सेवा साथियों के लिए, परिवार के लिए और साथ ही सिचुएशंस के लिए कैसे हम अपने आप को पॉजिटिव करें। फोर्थ एस है शुद्ध दृष्टि। बाबा दृष्टि की बात हमेशा करते हैं, आप लोग साकार मुरली में सुनते ही रहते हैं, बाबा हमेशा शुद्ध दृष्टि की बात करते हैं या आत्मिक दृष्टि की बात करते हैं, या जब भी कर्मेंद्रियों की बात करते हैं तो बाबा ये जरूर कहते हैं, किस कर्मेंद्री को याद करते हैं, कौन धोखा देती है, क्या अब तक हमारी आंखें हमें धोखा देती हैं? साकार बाबा कह गए हैं आंखें धोखा देती हैं, या अब हम इतने लंबे समय से ज्ञान मार्ग पे चलते आए हैं, अब तक यदि हमारी आंखें कहीं डूबती हैं, कहीं जाती हैं, तो क्या कहेंगे? फिर वही बात कि आखिर कब हम अपनी आंखों को संयमित करेंगे। इस वर्ष के अपने एजेंडे में, अपने प्लान में हम शुद्ध दृष्टि को जरूर शामिल करें, शुद्ध दृष्टि। और शुद्ध दृष्टि का भाव ये है आत्मिक दृष्टि, मेरी दृष्टि बहुत शीतल हो। कहते हैं योगी के नयन स्थिर होते हैं, चलायमान नहीं होते, चंचल नहीं होते। दुनियावी लोगों को आप देखेंगे तो उनकी नजर बहुत चंचल होती है, लेकिन योगी की नजर स्थिर होते हैं, एक पर एकाग्र होते हैं। मन बुद्धि चूंकि एक पर एकाग्र है तो नजर भी बिल्कुल एकाग्र हो जाते हैं, हमें किसी और को देखने की आवश्यकता नहीं है। एक प्लान बना लें, इस वर्ष में मेरी दृष्टि केवल भ्रिकुटी पर ही जाए, सिर से नीचे मेरी दृष्टि जाए ना, क्या ऐसा हम अपने एजेंडे में, अपने प्लान में शामिल कर सकते हैं? बस लक्ष्य की बात होती है, पापा कहते हैं लक्ष्य रखोगे तो लक्षण आते जाएंगे, प्लान बनाएंगे तो वो प्रैक्टिकल में लाने की इच्छा होगी। लेकिन हमें एक लक्ष्य रखना होगा कि इस बार मुझे ये करना ही है। जब दृष्टि शुद्ध हो जाएगी तो ये आंखें, बाबा कहते हैं, लाइट हाउस माइट हाउस की तरह चमकने लगेंगे, बल्ब की तरह हो जाएंगे, जिसमें देख करके आत्माओं को साक्षात्कार होगा, अपने भविष्य का भी और आपका भी। और जब तक आंखों में विकार के कोई अंश हैं, देह को देखने की आदत है, तब तक इन आंखों से हम साक्षात्कार नहीं करा सकेंगे। जो अंदर होगा वही बाहर दिखाई देगा ना। यदि मेरे अंदर की भावनाएं शुद्ध हैं, यदि मेरी दृष्टि में ऐसी शुद्धि है, तभी आत्माओं को साक्षात्कार होगा। तो साक्षात्कार कराना है ना। साक्षात्कार का पाठ चलेगा तभी तो जय जयकार होगा कि यही है हा? जिनको हम ढूंढ रहे थे हा? एक बार यदि ये पाठ शुरू हो गया, उसके बाद तो फिर माउंट से आबू रोड तक क्यों लग जानी है ना। फिर हम लोगों को पढ़ने का, पुरुषार्थ करने का वक्त नहीं मिलेगा। अभी हमारे पास वक्त है, क्यों ना हम इस 16 को अच्छे से अपनी शुद्ध दृष्टि के साथ अच्छे पुरुषार्थ में शामिल करें। तो 4th S है शुद्ध दृष्टि। अपनी दृष्टि में बहुत शुद्धता, आत्मिक भाव, कल्याण का भाव सबके लिए। और जैसे बाबा हम सबके चमकते हुए सितारे को, जब भी बाबा शुरुआत करते हैं अव्यक्त मुरली की, तब भी यही कहते हैं ना कि सबके भ्रिकुटी में चमकते हुए सितारों को बाप दादा देख रहे हैं, फिर हमारे स्वमानों को याद दिलाते हैं। तो जैसे हमारे पिता है, जैसे उनकी दृष्टि है, वैसी ही दृष्टि हमारी भी हो जाए ना, तो ये मधुबन, तो हमारे सेवा केंद्र, तो आपका लौकिक घर जैसे जादू की कुटिया बन जाएगी। लोग आएंगे, आपकी नजर से निहाल हो जाएंगे। ये नजर से निहाल केवल भगवान के लिए गायन नहीं है, ये भगवान के बच्चों के लिए भी गायन है, उन महान आत्माओं के लिए गायन है जिन्होंने अपनी दृष्टि को बहुत शुद्ध कर लिया है। हम भी अपनी दृष्टि को आने वाले वर्ष में शुद्ध कर लें, आत्मिक कर लें, ताकि आने वाली आत्माएं साक्षात्कार कर सकें। एंड 5th S है शुभ भावना, शुभ कामना सर्व के लिए। हमारी ये संस्कृति रही है, भारतीय संस्कृति रही है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ये हमारी संस्कृति रही है, अब ये हमारे आचरण में और जीवन में आ जाए। सबके लिए शुभ भावना, शुभ कामना। इसलिए देख लीजिएगा, अभी मैं ये नहीं करा रहा हूं, लेकिन आप देख जरूर लीजिएगा कि किसी के लिए मन में कोई ऐसी दुर्भावना तो नहीं है, बदले की भावना तो नहीं है। कोई एक आत्मा, दो आत्मा, तीन आत्मा ऐसी होती हैं हर एक की लाइफ में। यदि आप अपनी लाइफ को देखें तो अभी भी हो सकते हैं जो लगातार आपको परेशान करते रहते हैं, लगातार आपके रास्ते में कांटे बोते रहते हैं, बिना मतलब ही आपको परेशान करने पे तुले होते हैं, है ना। आपको समझ में नहीं आता कि ये महान कार्य ये क्यों कर रहे हैं लेकिन उनको ये लगता है कि हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, इनको हम रोक के रहेंगे, इनको आगे नहीं बढ़ने देंगे, इनको वहां तक नहीं पहुंचने देंगे जहां तक ये पहुंचना चाहते हैं। या नहीं, हर एक के जीवन है या नहीं है, हर एक की लाइफ में ऐसे होते ही हैं जो परीक्षा लेने वाले होते हैं। तो क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, इतने शक्तिशाली बन जाएंगे कि उनको भी खींच के अपने साथ आगे ले जाएंगे और साथ ही ना इस पुराने वर्ष में ना दिल से उनको क्षमा कर दें, दिल से। मैं अभी पिछली बार एक जगह था, वहां पे एक क्षमा भावना के ऊपर थोड़ी बातें हो रही थी, तो मैंने मास में मेडिटेशन कराया और सबसे कहा कि कम से कम एक, दो या तीन जो आपको लगते हैं कि ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा आपको, जिन्होंने तकलीफ दिया हुआ हो, उनको सामने लाएं और ईश्वर की याद के साथ उन्हें क्षमा करें। तो काफी देर तक ये सेशन चलता रहा। लास्ट में ना एक भाई आए, थोड़े प्रौढ़ से थे, लगभग 50 ईयर्स ओल्ड थे। उन्होंने कहा कि मेरी लाइफ में चार ऐसे लोग थे जिन्हें मैं ना कभी माफ नहीं करने वाला था उन्होंने इतना बुरा किया मेरे साथ, मैंने सोच लिया था कि लाइफ में कभी इनको मैं माफ नहीं करूंगा और जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकेगा मैं इनको नुकसान पहुंचाऊंगा। लेकिन आज आपने कहा तो ऐसी फीलिंग थी कि मुझे लगा कि नहीं, सचमुच मैं भगवान का बच्चा हूं। और भगवान जब माफ कर देते हैं हमें, भगवान भी तो हमें माफ करते हैं ना, हम भी कितनी गलतियां करते आए हैं, अब भी कितनी हमसे कई बार गलतियां हो जाती हैं, लेकिन बाबा हमें माफ करते हैं ना। इसीलिए एक बहुत सुंदर कोट मैंने कहीं पढ़ा था कि रात को सोने से पहले तुम सबको माफ कर दो तो सुबह आंख खुलने से पहले मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। ये भगवान के महावाक्य है, रात को सोने से पहले तुम सबको माफ कर दो तो तुम्हारी आंख खुलने से पहले मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। वैसे तो ये शर्त नहीं रखते भगवान, लेकिन एक नियम है, जब आप दूसरों को करते हैं ऑटोमेटिक आपके भी साथ होता है, तो ये जरूर कीजिएगा। आप देखिएगा कि कोई ऐसे हैं तो जरूर वो याद आते रहते हैं और हमारे पुरुषार्थ में विघ्न रूप बनते रहते हैं। इसीलिए ऐसे लोगों को माफ करेंगे और इस 2016 में सबके लिए दिल से दुआएं, दिल से शुभकामनाएं, सबका भला हो, सबका कल्याण हो, सबकी उन्नति हो, सब बाबा के जैसे बने, सबके जीवन में जो भी शुभ मनोकामनाएं हैं सब पूर्ण हो। आप दिल से दुआएं दे करके देखो, बाबा कहते हैं कि जब दिल से दुआएं आप देते हो वो दुआएं हजार गुना रिटर्न होकर के आपके पास आती हैं और आपको हल्का कर देती हैं। ये दुआएं लिफ्ट का काम करती हैं, आपको उड़ाती हैं। तो दिल से सबको दुआएं देंगे, शुभकामनाएं देंगे, ठीक है। या शुभ भावना, शुभ कामना भी अच्छी चीज है, हा? रखनी चाहिए अपने पास, रखनी चाहिए, हा? अच्छी है। अशुभ भावना अच्छी चीज है नहीं ना? शुभ भावना अच्छी चीज है, हमें सबके लिए शुभ भावना रखनी है, अशुभ भावना नहीं। देखिए जो जो करेगा वो पाएगा, इसीलिए हम उसे अपने कर्म के ऊपर छोड़ दें, हम उससे प्रभावित ना हो। टिट फॉर टैट की नीति दुनिया वालों की है, बाबा ने हमें सिखाया है यदि कोई तुम्हारे साथ बुरा भी करता है तुम उससे अच्छे वाइब्रेशंस देकर के चेंज कर सकते हो। बाबा का एक महावाक्य आपको याद दिलाऊं, बहुत पहले बाबा ने कहा था, शायद डायमंड जुबली ईयर था उस वर्ष में, कि कैसा भी काला कोयला हो यदि तुम उसे चमकते हुए हीरे के रूप में देखोगे तो उसका कालापन दूर होता जाएगा। सी, ये कितनी बड़ी सेवा है हमारी, केवल बोल करके हमें सेवा नहीं करनी है, और बोलने से लोग सुधरते भी नहीं, ये आप जानते हैं। बाबा इतनी बार कहते हैं तो भी उनमें सुधार नहीं आता, हम बोलेंगे तो भी क्या सुधार आ पाएगा। लेकिन ये जो वाइब्रेशंस हैं, ये जो शुभ भावना और शुभकामना है, ये बहुत ज्यादा वर्क करते हैं। इसीलिए सबको यदि हम चमकते हुए हीरे के रूप में देखें, उन्हें अच्छे संकल्प दें कि इनका भला हो, इनका कल्याण हो, इनकी उन्नति हो, तो उसका तो होगा ही होगा, लेकिन उससे पहले मेरा भला हो जाएगा, मैं हल्का हो जाऊंगा। तो फिफ्थ एस है सबके लिए शुभ भावना और शुभ कामना। और सिक्स्थ एस है सुखदाई बोल, सुखदाई बोल जिस पे बाबा बहुत ध्यान दिलाते हैं हम लोगों का। साकार मुरली में तो हर तीसरे चौथे दिन बोल के ऊपर बाबा कह ही देते हैं, बच्चे तुम्हारे बोल सुख देने वाले हों, दुख देने वाले बोल मत बोलो, दुख देंगे तो वो डैश 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 हो जाता है। सुख देंगे तो हमेशा सुखी रहेंगे, और भगवान सुख के सागर के हम बच्चे हैं, तो फिर हमारे अंदर से दुख देने वाले बोल कैसे निकल सकते हैं। हमारे मुख से तो रत्न निकलने चाहिए ना, कंकड़ पत्थर तो दुनिया में निकालने वाले बहुत हैं। हमारी विशेषता क्या है, हम अल्लाह लोग हैं, हम ईश्वर की संतान हैं, कैसे लोग इस बात को मानेंगे कि ये भगवान के बच्चे हैं। जब हमारे बोल को देखेंगे, उसमें मधुरता को देखेंगे, उसमें स्वमान और वरदान को देखेंगे, तो हम अपने बोल के द्वारा सेवा करें ना। हमें ज्ञान देने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हमारे चलन चेहरे से, हमारे बोल से ही लोगों को लगता है कि ये साधारण लोग नहीं है, ये विशेष हैं, और खींचे चले आते हैं हमारे पास। तो अपने बोल पर भी इस नए वर्ष में हम विशेष ध्यान देंगे कि मेरे बोल सुखदाई बोल हो, व्यर्थ बोल ना हो, कंकड़ पत्थर जैसे बोल ना हो, जिसको बाबा हमेशा कहते हैं बोल ऐसे होने चाहिए जो रिकॉर्ड कर लिए जाएं, रिकॉर्ड करने जैसे बोल तुम्हारे होने चाहिए, ऐसे सुखदाई बोल बोल बोलने चाहिए तुम्हें जो सामने वाला कितना भी दुखी हो, अशांत हो, उसके दिल को आराम मिल जाए, सुकून मिल जाए। इसीलिए अपने बोल पर हम बहुत बहुत ध्यान देंगे। देखिए कोयल और कौवा दोनों ही काले हैं ना, लेकिन हम सुनना किसे पसंद करते हैं, कोयल को। दुनिया की भी यही रीति नीति है, लोग भले मीठा बोलें या ना बोलें, लेकिन हमसे वो क्या कामना करते हैं कि ये जरूर मीठा बोलें, जरूर सुखदाई बोल बोलें। तो हम जरूर सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले स्वमानदाई बोल बोलेंगे, सुखदाई बोल बोलेंगे, वरदानी बोल बोलेंगे, दूसरों को प्रोत्साहित करने वाले बोल बोलेंगे, और साथ ही साथ बोल ऐसे हों जैसे बाबा के होते हैं, इस बात का भी हम विशेष करके ख्याल रखेंगे। वो कहते भी हैं, संस्कृत में एक श्लोक आता है, उसका भाव ये है कि सत्य बोलो और साथ साथ प्रिय बोलो। यदि हमें सत्य भी बोलना है, किसी को यदि कोई शिक्षा और सावधानी भी देनी है, तो भी ऐसे ढंग से बोलें कि सामने वाले को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, सामने वाले को ये एहसास होना चाहिए कि ये मेरे कल्याण के लिए बोल रहे हैं। ठीक है, तो हम सिक्स्थ एस पर अर्थात सुखदाई बोल पर भी विशेष ध्यान देंगे कि मैंने आज सारे दिन सबको सुख देने वाले बोल बोले, आराम देने वाले बोल बोले। बोल तो सभी बोल रहे हैं, लेकिन इस वर्ष मेरे बोल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हों, सुख देने वाले भी हों और साथ ही मास्टर सद्गुरु बन करके सबको वरदान देने वाले बोल भी हों। किसी को दुख या कष्ट देने की बात तो बहुत दूर हो जाती है, लेकिन अपने बोल के द्वारा ऐसे हम कुछ ना शब्द बोल दें जो कहीं भी किसी व्यक्ति या किसी आत्मा के पुरुषार्थ में गिरावट आने लगे। भले किसी की कमी देखते भी हैं, तो भी हम कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करें ताकि सामने वाली आत्मा उस चीज को रियलाइज कर ले। एंड सेवेंथ एंड लास्ट इज है मोस्ट इम्पोर्टेंटली श्रीमत। आजकल थोड़ी कम चर्चा होती है श्रीमत की, जब पहले पहले हम लोग समर्पित हुए थे श्रीमत की बहुत चर्चा होती थी कि श्रीमत क्या है, बाबा क्या श्रीमत देते हैं, मन के लिए क्या श्रीमत है, बोल के लिए क्या है, कर्म के लिए क्या है। श्रीमत की बहुत सुंदर चर्चा होती थी, क्योंकि श्रीमत ही तो है ना जो हमें श्रेष्ठ बनाने वाली है। श्रीमत ही है जिसके लिए बाबा का एक महावाक्य था, साकार महावाक्य है कि ब्रह्मा बाबा नंबर वन में इसलिए गए क्योंकि श्रीमत को एक्यूरेट पालन करने में नंबर वन थे ब्रह्मा बाबा। बाबा जो कह रहे हैं, अब तक तो हम मनमत के अनुसार चलते आए हैं, परमत के अनुसार चलते आए हैं, लेकिन मनमत और परमत पे चल के हमारी क्या हालत हुई है ये हम सब जानते हैं। तो द्वापर कलयुग से जो स्थिति हमारी रही वो अपने मनमत और परमत के कारण ही रही है ना। क्या इस एक साल बहुत ही दृढ़ता के साथ, बहुत ही लगन के साथ हम ये एक योजना अपने लिए बना सकते हैं, ये कमिटमेंट कर सकते हैं अपने साथ कि हम श्रीमत का पूरी तरह पालन करेंगे। न केवल बाहरी और मोटी श्रीमत, अमृत वेला से लेकर रात तक की श्रीमत का हम पालन करते हैं, कोशिश करते हैं कि हम पूरा पूरा चलें, लेकिन उसके अलावा बाबा ने मुरलियों में जो हमें शिक्षाएं दी हैं, जो श्रीमत दी है हमारे जीवन को जो श्रेष्ठ बनाने वाले हैं, जो हमें लक्ष्मी नारायण के तुल्य बनाने वाले हैं, देव तुल्य बनाने वाले हैं, उन श्रीमतों पर मैं कितना अमल करता हूं या करती हूं, कितना उन पे मेरा ध्यान है, या मैं ये सोच लेता हूं या सोच लेती हूं कि सब चलता है, बड़े भी तो ऐसा करते हैं, या मैंने बहुतों को देखा है ये कार्य तो चल ही जाता है। श्रीमत को भी समझने के लिए ना बहुत सूक्ष्म बुद्धि की आवश्यकता है, इसीलिए दूसरों को ना देखें, बाबा ने हमेशा कहा है मदर फादर को, माता पिता को देखें जब कभी श्रीमत के पालन की बात आती है। तो हो सकता है सामने वाला किसी परिस्थितिवश कुछ कर रहा हो और आपने उसे देखा और ये सोच लिया कि यहां तो ये सब चलता है, हम भी कर सकते हैं, है ना। पहले चॉकलेट्स बिस्किट्स आदि होती ही नहीं थी यज्ञ में, किसी ने शायद खाया होगा और किसी ने देख लिया होगा, उसके बाद चॉकलेट्स और बिस्किट्स भी आने शुरू हो गए, है ना, राइट। तो हम ये देखें कि मैं कितना श्रीमत के अकॉर्डिंग चल रहा हूं, क्योंकि जितना हम बाबा की श्रीमत के अनुसार अपने जीवन को बनाएंगे उतना ही हम श्रेष्ठ पद के भी अधिकारी बनेंगे, और साथ ही श्रीमत हमें संयम सिखाता है ना, ये संयमित जीवन है, और ये संयम सचमुच हम लोगों को सारे कल्प के लिए महान पद का अधिकारी बनाने वाला है। तो इन सातों ही एस पर जब आप प्लान करेंगे तो जरूर विचार कीजिएगा। पहला एस संपूर्णता के लिए, फर्स्ट एस क्या था, श्रेष्ठ स्मृति, दूसरा एस समर्थ स्थिति, तीसरा एस सकारात्मक वृत्ति, फोर्थ एस शुद्ध दृष्टि, फिफ्थ एस शुभ भावना, शुभ कामना. सिक्स्थ इज सुखदाई बोल और सेवेंथ इज श्रीमत. यदि इन सातों पर और भी चीजें हो सकती हैं, लेकिन एक सेवन स्टेप की तरह आप अपने प्लान में, अपने चार्ट में, अपनी दिनचर्या में इन पर विचार जरूर कीजिएगा कि कैसे हम इन्हें शामिल करें. तो यदि दृढ़ता से इनका पालन होता है तो जरूर हम अपनी संपूर्णता की मंजिल को प्राप्त करेंगे और बाबा जैसा हमें बनाना चाहते हैं वैसा हम बन पाएंगे. और ये सबसे बड़ी गिफ्ट होगी बाबा के लिए. कई लोग ये एक शाम मनाते हैं ना कि एक शाम प्रभु के नाम. तो मैं हमेशा सोचता हूँ कि एक शाम बस प्रभु के नाम करने से तो काम नहीं चलेगा. क्यों ना हम एक साल प्रभु के नाम इस रूप में इस साल को मनाएं, एक साल प्रभु के नाम या एक साल अपनी संपूर्णता के नाम. तो निश्चित रूप से इन पे दृढ़ता से वर्क करने से हम लोग अपनी संपूर्णता की ओर बढ़ पाएंगे. मेरी बहुत सारी दिल के दुआएं हैं, शुभकामनाएं हैं आप सबके लिए कि आप सब अपनी संपूर्णता को नए वर्ष में प्राप्त करें. जो भी आप लोगों ने लक्ष्य बनाया हो उस लक्ष्य को प्राप्त करें और बाबा का विशेष जो एक आशीष है या वरदान है वो वरदानी हाथ आप लोगों के सिर पर रहे, जिससे आप सहज रूप से अपने मार्ग पे आगे बढ़ सकें. ओम शांति. चलें अब विशेष इन्हें अपने अंदर समाएंगे, इन सातों ही बातों को इन पर चिंतन करते हुए. विशेष जैसे कहा कि पास्ट ये जो पूरा वर्ष रहा है उस पर एक नजर और उससे सीखते हुए संपूर्णता का दृढ़ संकल्प लेंगे और इन सातों बातों को अपने जीवन में लाने का विशेष संकल्प लेंगे. चलिए